साथियों नमस्कार, आप सुन रहे मोबाइल वाणी। मोबाइल वाणी के लिए मैं दिनकर पासुकर आज महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर हमारे साथ रूबरू होने जा रहे शासकीय महाविद्यालय अमलवाड़ा के प्रोफेसर एवं मध्य प्रदेश इतिहास परिषद संकलन के सदस्य विजय गुर्वे जी। नमस्कार गुर्वे जी।
नमस्कार दिनकर जी।
गुर्वे जी, जैसा कि आज महाशिवरात्रि पर्व संपूर्ण देश में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है और 12.5 ज्योतिर्लिंग में से मध्य प्रदेश में दो नहीं अपितु तीन ज्योतिर्लिंग है, तो मैं आपसे जानना चाहते कि इन ज्योतिर्लिंग के पीछे का रहस्य और इसका महत्व।
जी दिनकर जी, शिव पुराण में हमें एक श्लोक का उल्लेख प्राप्त होता है। मैं सर्वप्रथम तो सभी श्रोताओं को महाशिवरात्रि पर्व की बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करूंगा और यह बताना चाहूंगा कि यद्यपि पौराणिक विवरण के अनुसार द्वादश ज्योतिर्लिंगों का उल्लेख हमें प्राप्त होता है, पौराणिक विवरण में यह कहा गया है कि सौराष्ट्रे सोमनाथच श्री शैले मल्लिकार्जुनम उज्जैना महाकाल ओंकारम परमेश्वरम केदारम हिमतवत्पृष्ठे दाकिन्याम भीमशंकरम वारण्यस्याच विश्वेश्वरम त्र्यंबकम गोत्मी तटे वेन्द्रनाथ चिताभूमो नागेश्वरम दारुकावणे सेतु बंधे चे रामेश्वरम गुरमेशन शिवालय। लेकिन जैसा कि आपने उल्लेखित किया है कि इन 12 ज्योतिर्लिंगों के अलावा भी शिव और शाक्त अर्थात शिव और शक्ति से मिलकर अर्धनारेश्वर जो शिव का ही एक स्वरूप माना जाता है, इस प्रकार का एक ज्योतिर्लिंग हमारे क्षेत्र में मोहगांव हवेली में प्राप्त हुआ है और निश्चित ही यह शोध का विषय है। इस पर बात करने से पूर्व, जैसा कि पूरे भारतवर्ष में 12 ज्योतिर्लिंग है और उसमें से दो प्रमुख ज्योतिर्लिंग हमारे मध्य प्रदेश में है, जिसमें से एक उज्जैन में स्थित है जिसे हम महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग कहते हैं और यह पूरे भारत का एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान है। महाकाल मंदिर की एक परंपरा रही है और उस पर वैदेशिक आक्रमण भी हुआ है। जैसा कि हम जानते हैं कि मध्यकाल में अरबों एवं तुर्कों का आक्रमण हुआ था, तो यहाँ इसके संरक्षण के लिए इसे एक कुएं में भी रखा गया था लगभग 500 वर्षों तक, जो स्वयंभू ज्योतिर्लिंग था उसे और उसका संरक्षण किया गया था। तो निश्चित ही पूरे भारत वर्ष के शिव भक्त यहाँ पर दर्शनार्थ आते हैं। और साथ ही एक और ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश में ओंकारेश्वर में स्थित है, जैसा द्वादश ज्योतिर्लिंग के श्लोक में कहा गया है, तो यह भी काफी महत्वपूर्ण है। खंडवा में स्थित है, माँ नर्मदा के तट पर मांधाता नाम के एक आइलैंड में स्थित है और यह माँ नर्मदा यहाँ पर ओम के आकार में बहती है, जिसके कारण इसका जो नामकरण है वो ओंकारेश्वर के रूप में जाना जाता है। एक और वहां पर ज्योतिर्लिंग है जिसे हम ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग कहते हैं और ये दोनों जो है वो एक ही ज्योतिर्लिंग माने जाते हैं। निश्चित ही मध्य प्रदेश में इन दोनों ज्योतिर्लिंगों के दर्शन के लिए पूरे भारतवर्ष के लोग यहाँ आते हैं। और इसके अलावा भी यदि हम मध्य प्रदेश में शिव से संबंधित कुछ दर्शनार्थ स्थलों की बात करें और ज्योतिर्लिंगों की बात करें, तो परमार शासक भोज के द्वारा भी भोजपुर में एक ज्योतिर्लिंग स्थापित किया गया था, एक मंदिर स्थापित किया गया था। काफी विशाल वह ज्योतिर्लिंग था लेकिन वह मंदिर खंडित अवस्था में है, जिसके कारण वहां पर वैधानिक या विधिवत रूप से पूजा अर्चना नहीं की जाती है। इसके अलावा भी हम बात करें पचमढ़ी की, होशंगाबाद जिले में चौरागढ़ नाम का एक शिखर लगभग 4,200 फीट ऊंचाई पर स्थित है और दर्शन करने के लिए वहां पर 1,300 सीढ़ियों से दर्शनार्थी जाते हैं। काफी एक यात्रा जो है काफी कठिन मानी जाती है, और उस कठिन यात्रा को पार करके लोग मन्नतें लेकर वहां पर त्रिशूल चढ़ाते हैं। तो निश्चित ही शैव संप्रदाय पाशुपत कालामुख और तापालिक, इसके अलावा नाथ संप्रदाय के
जी। जैसा कि अभी आपने सतपुड़ा की पर्वत श्रेणी होशंगाबाद जिले में पचमढ़ी के शिवजी की बात की है, जिसे चौड़ागढ़ के नाम से जाना जाता है, और यह जो चौड़ागढ़ है इसके लिए छिंदवाड़ा से और पचमढ़ी से दोनों जगह से यात्रा का और मेले का आयोजन होता है। जहां तक मुझे ज्ञात है, चौड़ागढ़ की प्रतिमा छिंदवाड़ा जिले के अंतर्गत आती है और भगवान शिव की प्रतिमा पचमढ़ी के अंतर्गत आती है, और यह मंदिर चौड़ागढ़ के नाम से जाना जाता है। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि इसमें छिंदवाड़ा जिला प्रशासन की क्या भूमिका रहती है, जो घोड़ा भगत के माध्यम से मेले का आयोजन करते हैं।
नहीं, निश्चित ही छिंदवाड़ा जिला प्रशासन की भी इसमें अहम भूमिका है। जैसा कि दर्शनार्थी मध्य प्रदेश ही नहीं अपितु महाराष्ट्र गुजरात से भी वहां पर जाते हैं, और एक बड़ी प्रशासनिक व्यवस्था वहां पर रहती है। कुछ जिलों की जो प्रशासनिक इकाइयां है वहां पर निरंतर अपनी शासकीय सेवाएं प्रदान करती है, और हमारे क्षेत्र के लोग भी वहां पर बड़ी संख्या में पहुंचते हैं, जिसमें से रामाकोना का भी एक अहम स्थान इस यात्रा में रहता है। और निश्चित ही प्रशासनिक दृष्टिकोण से पूरी व्यवस्था चौरागढ़ में की जाती है, जिसमें छिंदवाड़ा की भूमिका भी अहम है।
गुरुवे जी, हम आपसे और ये जानना चाहेंगे कि आपने मध्य प्रदेश में दो ज्योतिर्लिंग के अलावा तीसरे ज्योतिर्लिंग की भी बात कही, हम आपसे जानना चाहेंगे इसके अलावा और कौन कौन से भगवान शिव के दर्शनीय एवं पर्यटन के हिसाब से तीर्थ क्षेत्र है, आस्था का केंद्र और श्रद्धा का केंद्र, ऐसे कौन से स्थल है जो आज के दिन बड़ी संख्या में लोग वहाँ श्रद्धालुगण पहुंचते।
जी, जैसा कि मैंने पूर्व में भारतवर्ष की बात की थी कि द्वादश ज्योतिर्लिंग भारतवर्ष में स्थित है, उसमें से दो मध्य प्रदेश में है। इसके अलावा एक अर्धनारेश्वर ज्योतिर्लिंग मोहगांव में स्थित है, और निश्चित ही इसका एक ऐतिहासिक महत्व भी रहा है। यह जो स्थल है यह सर्पिनी नदी के तट पर स्थित है, और सतपुड़ा पर्वतमाला की प्रथम सीढ़ी पर ओदुम्बर वृक्ष के नीचे यह स्थान स्थित है। और इस मोहगांव हवेली का जो प्राचीन नाम हमें प्राप्त होता है वह महदगांव के नाम से है, जैसा कि पौराणिक विवरण है दंडकारण्य से कहा जाता था। और इसमें से यह जो अर्धनारेश्वर ज्योतिर्लिंग है यह अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता था। इसका पुनर्निर्माण पश्चातवर्ती कालों में हुआ है, जैसा कि हम जानते हैं कि छिंदवाड़ा जिले में देवगढ़ से गोंड शासकों का शासन संचालित होता था, तो उनका संरक्षण भी इस मंदिर को प्राप्त हुआ है और इसका पुनर्निर्माण किया गया है। कालांतर में भोसला शासकों ने भी इसे संरक्षण दिया और इसका पुनर्निर्माण करने के लिए अपनी अहम भूमिका का निर्माण किया। इसके साथ ही छिंदवाड़ा जिले की यदि मैं बात करूं तो राघा देवी नाम का एक अत्यंत प्राकृतिक क्षेत्र है, जिसे हम छोटा महादेव भी कहते हैं। यह बिछवा विकास खंड में स्थित है, और निश्चित ही प्राकृतिक दृष्टिकोण से यह स्थल मनमोहक है। और जैसा मैंने चौरागढ़ की बात की कि 1300 सीढ़ियों से ऊपर चढ़ के इसका दर्शन करना होता है, लेकिन यह राघा देवी मंदिर जो है एक गुफा में स्थित है, और 40 फीट गहराई में जब हम अंदर जाते हैं, प्रवेश करते हैं यात्रा काल में, तो यहाँ पर यात्रा समिति के द्वारा प्रकाश की व्यवस्था की जाती है, लेकिन आप अन्य दिनों में यदि पहुंचते हो तो आपको प्रकाश की व्यवस्था स्वयं करनी होगी टॉर्च आदि के द्वारा। तो 40 फीट नीचे उतरकर उस स्वयंभू लिंग का हम दर्शन कर सकते हैं। साथ ही छिंदवाड़ा जिले में यादव कालीन एक अत्यंत प्राचीन मंदिर हमें प्राप्त होता है, जो नीलकंठी के नाम से प्रसिद्ध है। गोदड़ देव का मेला यहाँ पर आयोजित किया जाता है, और कहा जाता है कि यादव वंश के एक मंत्री जिसका नाम हिमांद्री था, उन्होंने मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में अनेक मंदिर स्थापित किए। यह मंदिर भी उन्हीं के नाम पर हेमाडपंथी शैली का माना जाता है और निश्चित ही यह एक अलौकिक मंदिर है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो छिंदवाड़ा में पातालेश्वर भी काफी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। चूंकि मैं अमरवाड़ा में अपनी सेवाएं दे रहा हूँ तो यहाँ पर गरमेटा में एक अत्यंत प्रसिद्ध मंदिर है और यहाँ पर भी बड़ी संख्या में दर्शनार्थी पहुंचते हैं। साथ ही यदि हम सौसर विकास खंड के अंतर्गत बात करें तो ग्राम उटेकाटा में उत्तरवाहिनी नदी शोभा नदी यहाँ पर स्वयंभू लिंग स्थित है, विराजमान है। इस संदर्भ में मैं यह कहना भी चाहूंगा कि उटेकाटा ग्राम हमारे वारकरी संप्रदाय के प्रसिद्ध संत हीरामन एवं वाताजी महाराज की जन्मस्थली भी रही है और इन्होंने ग्राम रामाकोना में एकनाथ सृष्टि मेले के आयोजन के संस्थापक के रूप में भी इन्हें जाना जाता है। इसकी प्रथा आज भी प्रचलित है और ग्राम रामाकोना में बड़ी संख्या में लोग एकनाथ सृष्टि में आते हैं और यह जो मेला है यह पूर्ण रूपेण अब शासकीय कर दिया गया है। पहले एक समिति के द्वारा आयोजित की जाती थी, अब समितियां जो है वह इसके सहयोगी के रूप में भूमिका का निर्वहन करती है। इसके साथ ही हमारे क्षेत्र में घोघरा नाम का एक प्राचीन बहुत ही शानदार और उत्कृष्ट पर्यटन क्षेत्र है और इस घोघरा नामक स्थान में जो ज्योतिर्लिंग है उसके दर्शन के लिए भी बड़ी संख्या में वहां पर दर्शनार्थी पहुंचते हैं। निश्चित ही पूरे भारतवर्ष में यह जो शिव के उपासक हैं यह बड़ी संख्या में मौजूद है और अपनी आस्था को दिखाने के लिए आज के दिन ये अलग अलग क्षेत्रों में जाकर आराधना करते हैं, शिव की आराधना करते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं। और भारतवर्ष सनातन से संबंधित है, प्रकृति पूजक रहा है। लिंगों का उल्लेख तो हड़प्पा सभ्यता में भी प्राप्त होता है, इसके बाद भी प्राप्त होता है, तो निश्चित ही इसका महत्व आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अत्यधिक है।
गुरुवे जी, जैसा कि आपने छिंदवाड़ा जिले सहित मध्य प्रदेश के शिवलिंग एवं दर्शनीय स्थलों के बारे में बताया और आपने सनातन धर्म की बात करते करते एक प्रकृति पूजक की भी बात की है और आपने जो तीर्थ स्थल बताए कहीं ना कहीं वहां पर कोई प्रसिद्ध नदियां भी बहती है, जैसे कि आपने ओमकारेश्वर की बात बताई, वहां नर्मदा नदी है, नीलकंठ महादेव की बात बताई, वहां पर पेच नदी है, उटेकाटा में शोभना नदी है, इधर घोघरा में जाम नदी है, मोहगांव में सरपनी नदी है, तो रामाकोना में कन्हान नदी है और आज के दिन भगवान शिव को जो प्रिय है बेल धतूरा ये जो पौधे है, तो वास्तव में प्रकृति पूजा और शिव पूजा ये एक दूसरे के पूरक है। तो हम इसके संबंध में भी जानना चाहेंगे आपसे कि प्रकृति पूजा के साथ साथ शिव पूजा का क्या महत्व है।
जी दिनकर जी, यदि हम आध्यात्मिक दृष्टिकोण से बात करें तो ज्योतिर्लिंग जो है वह प्रकृति का सृजक माना गया है। चूंकि हम देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में जिन लिंगों की उपासना या जिन लिंगों की प्राप्ति हुई है वो किस दृष्टिकोण से उसे पूजा जाता था, तो यह शोध का विषय है। लेकिन जहां तक आध्यात्मिक दृष्टिकोण की बात करें तो ज्योतिर्लिंग जो है वह निश्चित ही प्रकृति का सृजन करता रहा है। जैसे हम बात करें नर और नारी से मिलकर ही इस सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, तो नर के प्रतीक स्वरूप लिंग और नारी के प्रतीक स्वरूप जो है वह पिंड, तो इस प्रकार से शिव और लिंग इससे मिलकर मतलब शिव और पिंड से मिलकर ही इस प्रकृति का सृजन हुआ है। ऐसा भी अनेक ग्रंथों में हमें उल्लेख प्राप्त होता है। और जैसा मैंने प्रकृति पूजा की बात की है, तो प्रारंभिक अवस्था में किसी प्रकार का कोई धर्म नहीं था, हम कह सकते हैं कि लोग प्रकृति पूजक थे। उसके बाद सनातन परंपरा प्रारंभ हुई और इस सनातन परंपरा के पश्चात धर्म जो है वह अलग अलग संप्रदायों में विभक्त हुए, जिसमें मूल रूप से शैव संप्रदाय, शाक्त संप्रदाय, इसके अलावा वैष्णव संप्रदाय। तो शिव के जो उपासक हैं वह शैव संप्रदाय के माने गए और उस पश्चातवर्ती काल में उसकी भी अलग अलग शाखाएं स्थापित हो जाती हैं, जैसे पाशुपत, तापालिक, कालामुख और नाग संप्रदाय। तो ये अलग अलग दृष्टिकोण से शिव की उपासना करते हैं, उनका जैसा जैसी विचारधारा है, लेकिन सामान्य जन की जो आस्था है शिव के रूप में कि शिव ने इस सृष्टि की संरचना की है, शिव एक हम कह सकते हैं कि एक बीज थे और उस बीज से पूरी सृष्टि या एक पूरा वृक्ष बना है, तो यह निश्चित ही एक साम्यता रखता है। हम प्रकृति पूजक थे, सनातनी थे और उसके बाद में मूर्ति पूजक बने, तो एक परंपरा है जिसके ऊपर भारतीयों की गंभीर आस्था है।
गुरुवे जी, अब हम आपसे एक अंतिम प्रश्न जानना चाहेंगे। जैसा कि वर्तमान में समूचा विश्व जलवायु परिवर्तन और उससे होने वाले दुष्प्रभावों से प्रभावित हो रहा है, और चूंकि सनातन धर्म में जो भी त्योहार है वह कहीं ना कहीं प्रकृति पूजा से जुड़कर है, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि महाशिवरात्रि पर्वों पर आप जनमानस को क्या संदेश देना चाहोगे कि वो जलवायु परिवर्तन से होने वाले दुष्प्रभावों से बच सके।
नहीं, अब ये जो आपका सवाल है दिनकर जी, ये वर्तमान में जो आध्यात्मिक क्षेत्र और आपने जलवायु परिवर्तन की बात कही है, तो ये साम्यता तो रखता है, लेकिन ये इसका जो जो दृष्टिकोण है वो अलग अलग है ना। आस्था अपने स्थान पर है और ये जो जलवायु परिवर्तन या जो प्रकृति का दोहन हो रहा है ये अपना एक अलग स्वतंत्र विषय है। लेकिन मैं यही कहूंगा कि जैसे आपने कहा कि प्रत्येक तीर्थ स्थल नदियों के तट पर बसा हुआ है और भारतीय परिप्रेक्ष्य में नदियों का अत्यंत महत्व रहा है, जितनी भी प्राचीन जो सभ्यताएं बसी है वो नदियों के तट पर ही बसी है और सभी प्राचीन जो गांव है, ग्रामीण परंपराएं है, वह भी नदियों के तट पर ही है और आध्यात्मिक स्थल भी हमें नदियों के तट पर कहीं ना कहीं प्राप्त होते हैं। तो मैं आज के दिन यही कहूंगा कि सनातन के पूर्व हम प्रकृति पूजक थे, तो हमें प्रकृति का संरक्षण किया जाना चाहिए या करना चाहिए, और जो भी हमारी प्राकृतिक व्यवस्थाएं है उसके साथ हम छेड़खानी ना करें। जैसे हम कह सकते हैं कि भाई नदियों का दोहन ना करें, उसको हम साफ सुथरा रखें, क्योंकि नदियां यह आस्था से जुड़ी हुई है, तो उसके संरक्षण का दायित्व भी हमारा है, चाहे वो कोई भी नदी हो, उसका दोहन ना हो और उसे साफ सुथरा रखा जाए, यह हमारा दायित्व है, यह सरकार का भी दायित्व है, यह समाज का भी दायित्व है, यह सामाजिक संस्थाओं का भी दायित्व है, सब अपने अपने भूमिका का निर्वहन करें।
बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी आपका कि आपने महाशिवरात्रि पर्व पर रूबरू होकर भगवान शिव के अनेकानेक स्थानों के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी दी, साथ ही जो आज विश्व जलवायु परिवर्तन से प्रभावित हो रहा है उसको लेकर भी आपने अपना एक महत्वपूर्ण संदेश दिया मोबाइल वाणी के माध्यम से। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा आज कि महाशिवरात्रि पर्व पर हमें प्रण लेने की आवश्यकता है और प्रकृति को बचाए रखने की आवश्यकता है। कहते हैं जल है तो वृक्ष है और वृक्ष है तो जीवन है, लेकिन हमें इस दृष्टिकोण से देखने की आवश्यकता है, वृक्ष है तो जल है, जल है तो हम है। इसी के साथ महाशिवरात्रि पर्व की समस्त देशवासियों को मोबाइल वाणी परिवार की ओर से बहुत बहुत बधाई एवं हार्दिक शुभकामनाएं। बम बम भोले हर हर महादेव।
जय हो।